వందేహం శ్రీగరు శ్రీతాపదకమలం శ్రీగరుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరంగనాథాంబితం కంసజీవం సాద్వైతం సావద్భూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ హే కృష్ణకరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తే సత్కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ ఋషిభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియ వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేద చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి విదాంత స్వామి నామినే నమస్తే సారస్వత దేవే గౌరవాణీ ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి హరే కృష్ణ. సో సభీ భక్తు కా మార్నింగ్ భాగవతం క్లాస్ మే స్వాగత్ హై ఔర్ సభీ సే మే ఆశీర్వాద్ కి యాచనా కర్తా హూ కి ఇస్ శ్రీమద్ భాగవతం జో కి అమల్ పురాణ హై ఇస్పే అప్నే శుద్ధీకరణ కే లియే ఔర్ వైష్ణవ్ కి ప్రసన్నతా కే లియే బోల్ సకే. आज हम भागवतम के साथ में इसका 14वें अध्याय का 38वां श्लोक बोलेंगे. देशे देवा भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा यथेयते. तेषु विभिन्न प्रकारों के शरीरों देव मनुष्य पशु पक्षी एवं एवं निसंदेह भगवान परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राजन हे राजा तारतम्येन अपेक्षया कम या ज्यादा वर्त पे स्थित है तस्मात् इसलिए पात्रम परम पुरुष ही निस्संदेह पुरुष परमात्मा यावन जहां तक आत्मा ज्ञान की सीमा यथा तपस्या का विकास प्रकट है. अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की. हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है. अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है. परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है. मेरे पीछे दोहरा सकते हैं. हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है. अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है. परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है. तात्पर्य कृपया ध्यान से सुने. भगवत गीता 15वें अध्याय प्रवेश 15वें श्लोक में कहा गया है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जीव को हम उच्च तथा निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव, पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य। इस तरह शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतः सर्वोत्तम पुरुष वैष्णव तथा विष्णु है। दान देते समय भगवत गीता से 17-20 आदेश ग्रहण करने चाहिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते यदुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना में बिना दिए जाने दिया जाता है उसे सतोगुणी दान कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान दे, क्योंकि इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में श्रीमद्भवाचार्य की टीका है। ब्रह्मादिस्थावरांतेषु न विशेषो हरे कुचित व्यक्ति मात्र विशेषेण तारतम्यं वदन्ति च। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी परमात्मा द्वारा संचलित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषे अर्जुन तिष्ठति। किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतएव ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि है। तो मैं सभी भक्तों का धन्यवाद कहूंगा कि मुझे इस प्रकार से भागवतम पे बोलने का मौका दिया गया। हालांकि मैं योग्य हूं इस चीज के लिए, फिर भी मैं शुद्धिकरण के लिए बोलने का प्रयास करूंगा। जैसे हम जो भक्त रेगुलरली क्लास सुन रहे हैं भागवतम, मैं तो उतना नहीं सुन पा रहा, पर जो लोग सुन रहे हैं रेगुलरली वो फेमिलियर होंगे क्या प्रसंग चल रहा है। और सातवें स्कंध का अभी कुछ ही दिन पहले हिरण्यकश्यप को मारा गया, मॉर्निंग भागवत क्लास में चर्चा हुई थी। और उसके बाद में सारे देवी देवता डरे और फिर प्रहलाद ने भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न किया। और ये स्टोरी सुना रहे थे स्वयं प्रहलाद के गुरु नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज को ये स्टोरी सुना रहे थे। ये भी बड़ा अचरज का विषय है। गुरु इतना प्रसन्न है अपने शिष्य से कि बता रहे हैं लुक एट माई डिसाइपल, मेरे शिष्य के बारे में सुनो, मैं बताता हूं। और फिर आगे चल के जब युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद की पूरा प्रसंग सुनाया नारद मुनि ने, तो युधिष्ठिर महाराज सब उसको सेटिस्फाइड नहीं हुए। ये उनकी भगवत जिज्ञासा को दिखाता है कि बोलते नहीं मुझे और बताइए, जैसे आपने बताया और ड्यूटीज बताइए। तो उन्होंने वनवासम में सभी लोगों की ड्यूटीज पूछी, तो पहले ब्रह्मचारी की और सन्यासी की, यदि पुरुष, तो खूब डिटेल में नारद मुनि ने यहाँ पे सेक्शन दिए हैं जो कि समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने कैटेगरी को चूज कर सकता है, अपने श्रेणी को जो ना निकाल सकता है, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन यहां से ले सकता है। और अभी जैसे जो उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि, वो दे रहे हैं कि एक पारिवारिक जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे एक आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन जिया जाए, आइडियल फैमिली लाइफ, आदर्श ग्रस्त परिवार क्या होगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है। अलग अलग प्रकार से बताया गया कैसे भक्तों को भगवत तत्व में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, चाहे परिवार में है तो भी उन्हें ब्राह्मण और सन्यासी से एसोसिएट करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और फिर आगे चल के युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताने लग गए चैरिटी, दान का महत्वपूर्ण, दान कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे ये प्रसंग आया कई भक्तों ने मुझे बोल के बहुत दिनों से चैरिटी के बारे में बोला भी जा रहा है और पुरुषोत्तम मास में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। तो और भक्त इसमें खूब जोर शोर से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इसी से थोड़ा सा और आगे नारद मुनि ने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत साइंटिफिकली बताया कि ब्राह्मण को चैरिटी क्यों देना चाहिए। ऐसा क्या विशेष है? आप किसी को भी दान दे सकते हैं। अभी हम लोग मैं कल गीता कॉलोनी से आ रहा था तो वहां पे एक बड़ा सा चौराहा है हाईवे फ्लाईओवर के नीचे, इतना बिजी रोड है तो भी लोग वहां पे कोने में निकाल के कबूतर को दाना देने आ रहे हैं। गुटर को खूब सारे कबूतर इकट्ठा होकर चैरिटी दे रहे हैं, कबूतर को भी चैरिटी दे रहे हैं। लोग समय मिलता है तो लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। पर यहाँ पे ब्राह्मणों को स्पेशली खिलाने पर बहुत जोर दिया गया। अगर इतना एंडेवर करना ही, यहाँ पे प्रयास समय टाइम निकालना ही है तो ब्राह्मण वैष्णव और श्री भगवान को भी यहाँ पे दान देने के लिए, परम पुरुष विष्णु को दान देने के लिए बोला गया। तो इस पे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर टीका भी दी, टीका और इसमें जरा युधिष्ठिर नारद मुनि बोलते हैं, क्योंकि जो परमात्मा से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। और परमात्मा कैसा कनेक्शन होता है कि परमात्मा हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं। हर जो लिविंग एंटिटी है, हर जीव है, चाहे वो निम्न योनि में हो, चाहे वो प्लांट के जीवन में हो और चाहे वो पशु योनि में हो, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। पर इसमें जो परमात्मा और जीवात्मा के जो हाइएस्ट आदान प्रदान होता है वो होता है ब्राह्मण की योनि में, जो मनुष्य योनि में, और ब्राह्मण जब होता है तो उसको बताया गया है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। साधारण लोग को लोग सोचते हैं, अरे बुद्धि बुद्धि तो मेरे हार्डवर्क से आ गया, या आप बुद्धि कैसे आ सकती है, आप थोड़ा च्यवनप्राश खा लीजिए थोड़ा थोड़ा और बुद्धि आपकी बढ़ने लग जाएगी। इस चीज का ज्यादा हमारे कई सारी कंपनी ने पूरा फायदा उठाया कि च्यवनप्राश खाने से आपकी बुद्धि बन जाएगी। पर हमारे शास्त्र बताते हैं बुद्धि च्यवनप्राश से नहीं आती। बुद्धि कहां से आती है? कौन देता है बुद्धि? परमात्मा। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। वो स्मृति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। भागवतम के दूसरे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी से कई श्लोक बोलते हैं कैसे बुद्धि परमात्मा से हारी। एक श्लोक बोलते श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति। जिसमें वर्ड आता है श्रियापति ऑपलेंस के साथ मालिक है, यज्ञपति वो यज्ञों के मालिक है, भोगता है। पर एक बहुत स्पेशल वर्ड यूज करते धियापति, वो बुद्धि के भी मालिक है। जनरली इस चीज के बारे में सोचा नहीं कि धियापति बुद्धि के स्वामी भगवान है। कई बार हमारे मन में कोई आइडिया आएगा और तुरंत बोलेगा कि जना लोग पेटेंट करवा लेते हैं, ये आइडिया मेरे पास से आया है, मैंने आइडिया दिया है और इसका जरा क्रेडिट सारा मुझे मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट डिग्री पीस। और स्पेशली जब लोग रिसर्च में काम कर रहे होते हैं जो लोग, उनमें तो यही काम ही होता है कि ओरिजिनल आइडिया, हालांकि ओरिजिनल बहुत कम होते हैं, पर लोग कहते हैं कि ओरिजिनल आइडिया मेरा आया है, ये बिल्कुल मैंने कुछ अलग हटके निकाला है। तो पर शास्त्र बताते हैं एक्चुअली ओरिजिनल आइडिया किससे आया है? परमात्मा से, किसी और से नहीं है। एक ग्रीक में एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं उसको, मिनिस्टर भी था, उसका नाम था आर्किमिडीज। तो एक बार उसको वहां के राजा ने, वो जानता था कि राजा ये बड़ा इंटेलिजेंट आर्किमिडीज, और उसको एक कार्य दिया। कार्य क्या दिया कि उस राजा को किसी एक ने बहुत सुंदर सा मुकुट जो ना बताया, मुकुट दिया, और बिल्कुल सोने का मुकुट था, शुद्ध सोने का कह रहा था वो व्यक्ति। तो राजा ने बोला आर्किमिडीज तुम्हें ये चेक करना है कि कैसे ये मुकुट ठोस सोने का है या नहीं, पर शर्त यह है कि तुम्हें इस पर कोई भी प्रयोग नहीं करना, मतलब कुछ भी इसको पिघलाना नहीं है, मेल्ट कहीं से भी नहीं करना, कोई हीट नहीं देनी। तो अभी आर्किमिडीज सोचने लगा, कई दिनों तक सोचता जा रहा था, उसको कोई आंसर नहीं मिला था, क्योंकि सोने को बिना पिघला, आप भी अगर आप सुनार की दुकान पर जाएंगे बोलेंगे अंगूठी असली है कि नहीं कि नकली है, तो भाई थोड़ा सा पिघलाएगा, आप बोले कि थोड़ा बिना पिघलाए इसको बताइए, तो बोलेगा आप इसको वापस ले जाइए, आपको देखे वो बिना पिघलाए बताएगा नहीं। पर आर्किमिडीज बहुत टाइम तक सोचता रहा, हर जगह सोचता था, खाता खाते हुए सोचता था और चलते फिरते भी वही सोचता रहता था। इतना सोचने लग गया कि नींद में भी वही सोच रहा था, बाथरूम में जाता तो वो भी सोच रहा था। तो अपने बाथटब में स्नान करने के लिए जब घुसा, जैसे घुसा वो अंदर, वो पानी बाहर निकल आया। उस टब के बाद पानी बिल्कुल बराबर से भरा हुआ था, वो पानी बाहर निकल आया, और तभी उस पानी बाहर निकलने से ही उसके माइंड में गाड़ी आया और चिल्लाते यूरेका चिल्लाते चले। इतना वो खुश हो गया कि वही नग्न अवस्था में पूरे जो ना सड़क पे भागने लग गया, यूरेका मतलब मिल गया। फिर उसने एक फिजिक्स में एक फेमस प्रिंसिपल निकाला जिसका नाम पड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसी की प्रिंसिपल की पे बेस हमारे बड़े बड़े जो शिप्स हैं, जहाज है, पनडुब्बियां हैं, वो फ्लोट करती है। ये आइडिया कहां पे आया, कौन सी जगह पे ये आइडिया आया? बाथरूम में। कई लोग पहले भी बाथटब में एंटर किए होंगे और पानी पहले भी बाहर निकला होगा, अरे आखिर भी इसके पास में आ गया। तो इतने दिन तक वो आइडिया कहां था? वो पहले जब सो रहा था, खा रहा था, सोच रहा था, तो आइडिया नहीं आया, और अभी वो आइडिया आ गया तो वो नाम पड़ गया आर्टिमिडीज परिसर का। इसी प्रकार से एक दिन एक व्यक्ति था, वो बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा, वो सेब गिरा उसके सर पे, उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, और उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा लॉ निकाल दिया फिजिक्स में, उसका नाम पड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसके पहले भी कई लोगों ने सेब नीचे गिरते हुए देखा था, किसी ने सोचा था मतलब सेब गिरा था, उनके मन में क्या आता है, उठा के खा लेते ये न्यूटन का दिमाग थोड़ा अलग था, सोचा कि सेब क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, हो सकता है उसके सामने पहले भी गिरा, पर कभी सोचा नहीं। और उसके माइंड में आइडिया आ गया, पहले क्यों नहीं आया, क्या नहीं, वो कहां था इतने देर तक वो सोच रहा था, तभी उसके पैर थे, कभी आइडिया नहीं आया, एक दिन अचानक से कैसे आ गया। तो एक दिन अचानक से तभी आएगा, और जो उसके पास पहले इस वजह से नहीं है कि पहले उसके पास नहीं था, और एक दिन एकदम से आ गया मतलब किसी ने उसको दिया लाके। अरे मैं जैसे व्यासासन पर बैठा, मेरे गले में माला नहीं थी, और किसी व्यक्ति ने मेरे आदत पहना, यही पर से माला आ गई, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैंने प्रकट कर दी, मतलब किसी ने आके लाके मुझे दी, तभी आई मेरे पास। तो अगर हमारे जीवन में कोई भी आइडिया आना चाहिए, कोई भी हम इस प्रकार की योग्यता प्रदर्शित करते हैं किसी भी फील्ड में, तो ये क्रेडिट हमेशा श्री भगवान को जाना चाहिए कि उन्होंने ही ये आइडिया दिया। और एक और साइंटिस्ट रहे जिसका नाम था गॉस, फिजिक्स में एक और साइंटिस्ट, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब एक गॉस लॉ करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का एक थ्योरम निकाला। वो थ्योरम, वो फॉर्मूला दूसरी तरफ से अगर कैलकुलेट करें तो बड़ा ही डिफिकल्ट फॉर्मूला था, पर उन्होंने बड़ा ही सिंपल तरीके, अचरज तरीके से निकाल दिया। और गॉस भी सोचते रहे मैंने कैसे सोच लिया ये फॉर्मूला। बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत देर सोचने के बाद गॉस सिर्फ इसी मतलब कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि द इक्वेशन केम टू मी नॉट बाय माय लेबर बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि ये जो फॉर्मूला है ये मेरे माइंड में सिर्फ भगवान की कृपा से आ पाया, हृदय में मेरे भगवान है और ये फॉर्मूला मेरे हृदय में उन्होंने उजागर किया था। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में ये भी लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सोचे और सोचिए बुद्धि कहां से आ रही है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, वो परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुंच सकता है, उस समय नॉट फुली बट एक सर्टेन लिमिट तक परमात्मा रियलाइजेशन कर सकता है। हाँ, ये मेरे पास बुद्धि ये आइडियाज परमात्मा की कृपा से है। कई बार हम सेवा कर रहे होते हैं, बड़े बड़े आइडियाज आ जाते हैं, कार्यक्रम बहुत आसानी से सेवाएं करता चले जाते हैं, कई बार हम फंसे रह जाते हैं, कुछ आइडियाज नहीं आ रहे। कई बार हम देखते हैं बिजनेस टाइकून्स, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, क्या आज छोटे से आइडिया से शुरू किया था, या गूगल नाम की कंपनी है गैराज में शुरू हुई थी, धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया, वो स्टडीज में उनका कुछ खास महारत नहीं था, ऐसे नहीं कोई बहुत बड़े एमबीए थे, हाई स्कूल एंटर फिल कुछ इस प्रकार से ऑफिस में लिखते थे बाहर, धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल फिल एंटर फिल कुछ इस प्रकार से आगे प्लेट भी लगाते, जिससे लोग आके देखे इससे नहीं होता है, बुद्धि कहीं और से आ सकती है। तो ये आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं, पर जैसा हमने देखा बिजनेस करने का आइडिया हो, या कोई इन्वेंशन करने का आइडिया हो, या डिस्कवरी करने का आइडिया हो, जैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक बात कह रहे थे, अरे ये बताओ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने जब डिस्कवर किया उसके पहले एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था? तो एक्चुअली ये अगर पहले एग्जिस्ट करता था ये लॉ तो था, ये लॉ किसने बनाया? गॉड ने बनाया, तो गॉड्स लॉ ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, पर न्यूटन ने डिस्कवर किया। तो हो सकता है किसी साइंटिफिक फॉर्मूला या कोई लॉ किसी ने डिस्कवर किया वो आइडिया, या पैसे कमाने का आइडिया, या घर चलाने का आइडिया, या कुछ हो सकता है ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का आइडिया, लोग तथा कथित अलग अलग प्रकार के आइडिया अपने माइंड में सोचते रहते हैं। कौन से आइडिया, कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ है? भाई ये सारे आइडियाज परमात्मा दे रहे हैं, परमात्मा पैसे कमाने का भी आइडिया दे रहे हैं, परमात्मा कोई साइंटिफिक इन्वेंशन का भी आइडिया दे रहे हैं, परमात्मा अलग अलग कार्य हर कार्य करने का आइडिया दे रहे हैं, पर कौन सा आइडिया, कौन सी बुद्धि, किस बुद्धि को कहा जाए कि वो श्रेष्ठ बुद्धि है और जिस पे परमात्मा बहुत खुशी खुशी देना चाहेंगे? भगवत गीता में भगवान बोलते तेषां सततयुक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। जो व्यक्ति लविंगली मेरी प्रेम में सेवा में लगा रहता है, मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो श्री भगवान को प्राप्त करने की बुद्धि एक्चुअली ये भगवान देना चाहते हैं, प्रोवाइड कर लेना चाहता हूं।
यह बुद्धि इसी वजह से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है। तो जो लोग इस बुद्धि को प्राप्त करने में लगे हैं वह एक्चुअली सबसे अच्छा गिफ्ट भगवान से पा रहे हैं, एक प्रकार से बुद्धि के टर्म्स में सुपर सोल उनको सबसे अच्छी बुद्धि। हम भी देखते हैं कोई व्यक्ति अगर भगवान को जानना चाह रहा है उसको पता नहीं किधर जाए, तो कई बार हमारे भक्तों से अगर हमने संवाद किया पूछा आप कृष्ण भावनामृत में कैसे आए, तो बता रहे थे कि मैं इधर ढूंढता रहता था, उधर खोज करता रहता था, अलग अलग जगह था, बड़ों लोगों से प्रश्न पूछता था, इससे प्रश्न तो कोई भी वह सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता था। और एक दिन मैंने अपने हाथ में प्रभुपाद की पुस्तक पाली एकदम से और उसमें मुझे आंसर मिल गए। एक दिन मैं प्रोग्राम में गया किसी प्रोग्राम में और क्वेश्चन का पूरा मैंने क्वेश्चन बैंक खोल दिया प्रभु जी के सामने, जो प्रभु जी आते उन्होंने सारे प्रश्न का आंसर दे दिया। तो ये रमा उपयंती थे, भगवान को पाने की जो बुद्धि उनको मिली वो ज्ञान वहां से मिला, बाहर से भी मिला और अंदर से भी भगवान ने प्रेरणा दी आप इधर जाइए अभी बुक खरीदिए ये लीजिए। तो इस प्रकार से उनको गाइडेंस देते हैं श्री भगवान। कई लोग कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, एक बार होके आ गए अगली बार बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर पता नहीं जैसे ही वो प्रोग्राम का टाइम हुआ अपने आप थोड़ी देर में अच्छा ठीक है बैग का किनारे करके झूठ बहाना लगा के लोग पहुंच जाते थे। कौन अंदर से धक्का दे कौन अंदर से धक्का देके उनको प्रोग्राम तक पहुंचाया, इस प्रोग्राम तक पहुंचाया। तो ये बताइए ये नमामुतियम थे, ये बुद्धि ये प्रेशर अंदर से भगवान लगा रहे धक्का दे रहे उठो चलो 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 वहां पे मेरा तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान गाइडेंस देते हैं व्यक्ति को उनके चरण कमल प्राप्त करने के लिए। हम सभी का जीवन में इस प्रकार से स्पेशली क्योंकि यहां पर सारा भक्त समूह है तो सभी का जीवन इस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा होगा। तो शास्त्रों में बताया गया है अलग अलग प्रकार की चेतनाएं, श्रील प्रभुपाद से प्रेयर्स बाय पर्सोनिफाइड वेदास उस चैप्टर में डिटेल में बताते हैं। एक चेतना मतलब अन्नमय चेतना, अन्नमय का मतलब हो गया कि बस मुझे खाने को मिल जाए, खाने को मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है हर टाइम उसको उसको कुछ भी खाने को दे कुछ भी आप उसके मुंह में डालेंगे वो खा लेगा कोई भी चीज हो, नहीं कुछ होगा तो अंगूठा पैर का अंगूठा हाथ का अंगूठा खोलना जो भी खेलने के लिए चीज देगी वो भी उसको क्या समझता है खाने की चीज है। उसको बहुत समय बाद समझ आता है कि खेलने की कोई चीज होती है। जैसे श्री राधा बलिकरण कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ श्री प्रभुपाद की जय। तो हर चीज उसके पूरा दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक लिए एक ही चीज के लिए एग्जिस्ट करती है कि मैं खा सकूं। थोड़े समय में जब उसकी बुद्धि विकास होती है तो उसका समझ आ नहीं खाने के अलावा कुछ और भी है, लोग खेलते भी है तो खेल और फिर उसको कोई अटैक करता है तो फिर आता है अन्नमय चेतना के बाद प्राणमय चेतना। प्राणमय चेतना का मतलब वो जन अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करेगा कि अरे मेरे पर अटैक करो मैं बचाऊंगा, छोटे बच्चे को आप कुछ डराइए पांच बुक कर लेगा थोड़ा विकास होने के बाद में। और इस प्रकार से जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो अपना घर इत्यादि बनाता है, खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, अन्नमय चेतना कंटिन्यूड है पर प्राणमय चेतना भी ऐड हो गई, खाने पीने का फैसिलिटी हो रहा है, जीवन कैसे चले दुनिया कैसे चले पूरी दुनिया से अन्नमय प्राणमय चेतना में गुजर रही है। फिर लोग सोचते हैं अरे खाने पीने और डिफेंड करने के अलावा भी कुछ होना चाहिए, कुछ मनोरंजन होना चाहिए, कुछ है हम सोचते हैं विचार करते हैं कविताएं सुनते हैं और थोड़ा चिंतन करते हैं अलग अलग प्रकार से विषयों पे। तो इसको कहते हैं मनोमय चेतना। व्यक्ति अन्नमय और प्राणमय के मन मनोमय मन के लेवल पे आ जाता है और अलग अलग पोएट्री चल रही है मूवीज इत्यादि देखने जाता है उसमें पूरा सोचता रहता है वापस आता है उसके ड्रीम्स में वही चलते हैं। तो इस प्रकार से मनोमय चेतना में लीन रहता है। तो उसके ज्यादातर प्रभुपाद जी बताते हैं पूरा सिविलाइजेशन यही अन्नमय प्राणमय और मनोमय, इससे ऊपर कोई नहीं सोच पाता। पर बहुत कम लोग होते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतिरिति सिद्धये जो इसके बियॉन्ड सोचने का प्रयास करते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म कौन है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं मैं कौन हूं, ये कहलाएगा विज्ञानमय चेतना। वो जानना चाहेंगे क्या है मैटर क्या है स्पिरिट क्या है, मैं कैसे जान सकता हूं मैं स्पिरिट हूं, तो इत्यादि ये सारी चेतना रहता है। ये बहुत विशेष है, यहां से ब्राह्मण शुरू ब्रह्म जानना चाहिए ब्राह्मण, यहां से ब्राह्मण की लेवल शुरू हो जाता है। और इन सब के ऊपर सबसे ऊपर चेतना होती है आनंदमय चेतना। आनंदमय चेतना में व्यक्ति ये समझता है जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास कि वह कृष्ण का नित्य दास है और उनकी प्रेमय सेवा में लगा रहना चाहिए और सिर्फ उसी के लिए बना है। जब उनकी प्रेम में सेवा में लगता है तो उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और एक्चुअली इसी चेतना को आनंदमय चेतना कहते हैं। तो ये वैष्णव की चेतना कह सकते हैं, ब्राह्मण या वैष्णव हाईएस्ट लेवल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो इसी वजह से ये चेतना है जहां पे जो चाहे विज्ञानमय चेतना हो गई चाहे आनंदमय चेतना हो गई, ये हाईएस्ट है। उसके पहले भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, पर कौन सा गाइडेंस, अन्नमय में खाना खा मिल जाएगा, ये खा लो उधर जाओ, ये पशु के पास भी होती है। प्रभुपाद बोलते हैं चींटी कहीं से भी आप मीठा मीठा छुपा के रखे चींटी पहुंच जाएगी। कौन गाइडेंस दे रहा है, अन्नमय चेतना, भगवान उसको गाइडेंस दे दिया। फिर थोड़ा हर डिफेंस की भी चेतना होती है प्राणमय, वो भी परमात्मा उसको देते रहते हैं, कोई खास चीज नहीं है, पशु में भी है। और हो सकता है मनमय, हाँ मनुष्य जीवन पाके हमने कविताएं लिख ली, अलग अलग थोड़े अच्छी टेलीफिल्म बना ली, एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्रीज बना ली, पर फिर भी बहुत ज्यादा आपने प्राप्त नहीं किया, हमने प्राप्त नहीं किया। असली क्वालिफिकेशन है जब विज्ञान में पे है और श्री भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है उनसे हम आदान प्रदान करें और फाइनली अपने असली स्वरूप श्री भगवान के दास के रूप में आ सकें। तो क्योंकि ब्राह्मण या वैष्णव इतने हाईली सिचुएटेड होते हैं साधारण प्लेटफॉर्म से, दे आर प्रॉपर कैंडिडेट्स फॉर चैरिटी। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यही बता रहे हैं, दान देते वक्त साधक व्यक्ति को बहुत सचेत रहना चाहिए वो किसको दान दे रहा है। जैसे भगवदगीता हमने पढ़ा तमोगुण रजोगुण तत्वगुण, तो तपस्या में भी तीनों चीज होते हैं, उसी प्रकार से दान में भी तीनों गुण होते हैं। तमोगुण का दान क्या है, सत्वगुण का दान क्या है, रजोगुण का दान क्या है, तो बताया सबसे पहले हम देखते हैं तमोगुण का दान। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। कि अपवित्र स्थान में अनुचित समय में कुछ गलत चीज रखने इस प्रकार से अयोग्य व्यक्ति को ध्यान दे दिया तो तामसी कहलाता है। कोई बोलेगा भैया इस प्रकार का ध्यान देने की जरूरत क्या है, तो देख रहे हैं साधारण लोग इतने अंधकार में है कि ऐसा ध्यान भी दे देते हैं। हम देखते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से मास मसकेयर करते हैं, इतने सारे लोगों को मारते हैं, पर तो भी उनके पास कहीं पैसा तो आता है, धन तो आ रहा है, कहां से आ रहा है, लोग उनके इस वायलेंस इस हिंसा को सपोर्ट करने के लिए भी बड़ी मात्रा में दान दे रहे हैं। तो इस नाम का तमोगुण का दान करते। एक बार एक व्यक्ति हमारे डिवोटी बता रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था पर बहुत सेल्फिश था, बहुत स्वार्थी था, उसको जाके उन्होंने बोला कि भाई कुछ ध्यान दो, दान दो, ये करो खिलाओ, तो भगवान के लिए ध्यान देना उसको समझ में नहीं आया, पर हाँ उसको ये समझ में आया कुछ खिलाना चाहिए, लोगों को खिलाऊंगा और मैं भंडारा करूंगा, ठीक है तुम्हारे माध्यम से नहीं करूंगा और जाके हम कुछ करूंगा। उसने जाके बहुत बड़ा एक भंडारा ऑर्गेनाइज करवाया, बोला मैं खूब लोगों को खिलाऊंगा, आखिर मेरा नाम होगा, मैंने इतने लोगों को खिलाया। और लोग खाने पीने के लिए आए और लाइन लगी, देखा खूब भीड़ उमड़ पड़ी है, और वो बसने जाके जाके चेक किया, वो क्या है उस भंडारे में मीट भी सर्व हो रहा था, पशु का मांस भी सर्व कर रहा था। वो इतना मूर्ख व्यक्ति कि वो दान में भी ऐसे जना 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 अयोग्य चीज लोगों को दान दे रहे। इसी प्रकार से लोग कहते कभी कभी दया खा के बोले ठीक है लो शराबी को भी दान देते, ले जाओ जाके जाके पियो थोड़ा एक तब भी मजे करो। तो इस प्रकार का दान तमोगुण का दान हो गया। फिर एक दान होता है गीता में बताया गया रजोगुण का दान। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। या तो मैं किसी भौतिक इच्छा के साथ दान दूं कि मैं ये दे रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, या इच्छा तो नहीं पर किसी तरह प्रेशर करके कुछ दबाव करके दान दे दिया। तो हम इसके कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने कई लेक्चर्स में बताते थे और कई कन्वर्सेशन में कोट किया, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय एक व्यक्ति थे मिस्टर सी आर दास। तो उस समय इंडियन में सब कोई इंडियन मूवमेंट के लिए दान दे रहे थे और सी आर दास एडवोकेट थे और उन्होंने काफी ध्यान दिया था फ्रीडम मूवमेंट के लिए। पर गांधी जी ने बोला एक दिन कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं आपका धन को नहीं चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं। तब वो इतने बड़ी फिगर बन गया तो गांधी जी ने उनसे डायरेक्ट बोला तो ना नहीं कह पाए। तो सब कुछ दान में एक प्रकार हमें जीवन दान के लिए आए तो आगे, पर इतना विरह तो महसूस हुआ अपनी पूर्ण जीवन शैली से, अपनी प्रीवियस जीवन शैली से, कि वो उसको सह नहीं पाया, थोड़े समय शैली छोड़ दिया, अनिच्छा पूर्वक मैंने दान दिया। तो इस दान को कौन सी श्रेणी में कहा जाएगा, रजोगुण में। और यहां पे प्रभुपाद जी ने कोट किया, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रतिकार की आशा के बिना बिना किसी भौतिक इच्छा के समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो इस प्रकार का दान देना चाहिए, और जो दान भगवान की सेवा के लिए दिया जाए और भक्तों की सेवा के लिए दिया जाए, भगवान के मिशन को सपोर्ट करने के लिए दिया जाए, वो दान दिव्योगी कहा जाता है। तो दान किसका दिया जा सकता है? अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। कोई धन का दान दे सकता है, कोई खाना पीने की सामग्री इत्यादि दान में दे सकता है, रहने की सामग्री इत्यादि दान में दे सकता है। कुछ लोग श्रम दान देते हैं, कुछ लोग आके सेवा करते हैं, हम देखते हैं गुरुद्वारे में मंदिर इत्यादि में लोग आके एक्टिविटीज करते, कई तरह के वॉलंटरी एक्टिविस्ट होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं सेवा करने के लिए। और कुछ लोग इन सारे ज्ञानों में ऊपर आता है, ज्ञान दान इत्यादि, ये सारे दानों को बहुत श्रेष्ठ बताया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपना लोग अर्थ ध्यान में दे सकते हैं, बुद्धि दान में दे सकते हैं, वर्ड दान में दे सकते हैं, और अपने प्राण भी, प्राण का मतलब मर जाना ही जरूरी नहीं, अपने जीवन भी दान में दे सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में बहुत स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं इसके, कि किस प्रकार से लोगों ने स्पेशल स्पेशल दान दिए। एक दान देने का बहुत स्पेशल एग्जाम्पल आता है नेक्टर डिवोशन में, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी मेंशन करते हैं उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, एक राजा मयूर ध्वज के बारे में। महाराजा मयूर ध्वज अपनी भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत ही प्रगाढ़ भक्ति थी उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया तो चारों बाकी उनके चारों भाई अलग अलग डायरेक्शन में निकले, और अर्जुन भी निकले तो अलग अलग जगह जीतते हुए जा रहे थे। पर रास्ते में एक दिन एक पर्टिकुलर लड़ाई में एक राजकुमार से मिले, इस राजकुमार का नाम था ताम्रध्वज, और उसने इतना भीषण युद्ध किया उस दिन, उसने उस पर्टिकुलर डे की जो फाइट हुआ उस दिन वो अर्जुन पे हावी हो गए। अर्जुन ने कभी भी सोचा नहीं था तो कोई एक व्यक्ति जिसका उन्होंने पहले शायद नाम भी नहीं सुना हो वो उस प्रकार से आए, और अर्जुन जिनके पास गांडीव है, गांडीवधारी अर्जुन को यू चेहरे चबा देगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए डाइजेस्ट करना। पर जैसे ही भक्त समस्या में होते वो किसका ध्यान करते हैं? श्री भगवान का ध्यान करते हैं। उन्होंने कृष्ण का आह्वान किया और कृष्ण तुरंत प्रकट हुए, अर्जुन से बोला अर्जुन घबराओ नहीं, जिससे तुम हारे हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ताम्रध्वज है, ये मेरा महान भक्त है, और उसका पिता है उससे भी महान भक्त है, उसका नाम है मयूर ध्वज, और ये हर कार्य मेरी सेवा के लिए कर रहा है, लड़ाई करने भी आ रहा है, सिर्फ किसी वजह से आ रहा है मेरी प्रसन्नता के लिए, तो इस वजह से इसको हरा पाना इतना आसान कार्य नहीं। तो बोला पर हम भी तो आपकी प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं, हम भी तो ये राष्ट्रीय योग आपकी सेवा के लिए करना चाह रहे हैं, और अगर इस प्रकार से मैं हार जाऊंगा तो महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो चिंता मत करो, सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा। पर अर्जुन को थोड़ा शक था, इतना महान भक्त मयूर ध्वज कैसे हो सकते हैं? तो भगवान तो परमात्मा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ गए अर्जुन के मन में ये कुछ डाउट चल रहा है, तो उन्होंने सोचा चलो अर्जुन को दिखाते हैं। बोला अर्जुन चलो ठीक है, हम चलते हैं मयूर ध्वज के कोर्ट में और तुम्हें दिखाते हैं क्या पात्रता है इस मयूर ध्वज की कि उस पर मैं इतनी कृपा कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा पहले अपनी योगिक शक्ति से भगवान ने दोनों का भेष बदला, खुद एक ब्राह्मण बन गए और ये अर्जुन को उस ब्राह्मण का असिस्टेंट के रूप में, मतलब अपने असिस्टेंट के रूप में रख लिया एक ब्राह्मण, और मयूर ध्वज के कोर्ट में पहुंचे और बोले रक्षा करे राजा, रक्षा करे, रक्षा करे राजन, रक्षा करे, इस प्रकार से वो पहुंचे। तो मयूर ध्वज, उनका दरबार तो हमेशा ब्राह्मणों के लिए खुला रहता था, और इस प्रकार जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मयूर ध्वज तुरंत खड़े हुए, उन्होंने आदर सत्कार किया, ब्राह्मण से बोले कि आसन ग्रहण करें, पर ब्राह्मण बोले नहीं नहीं आसन ग्रहण करने का समय नहीं है, मैं उसमें बहुत समस्या में हूं, मैं बहुत समस्या हूं। बोलिए बोलिए, उन्होंने बोला मयूर ध्वज बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं जो भी सेवा कर सकता हूं, जो भी प्रयास कर सकता हूं करूंगा। पर फिर वो ब्राह्मण बोले, जो कि स्वयं भगवान थे, बोले मैं जो चाहता हूं तो पर कैसे बोलूं क्या करूं। मयूर ध्वज ने बोला लगता है आपको शक है कि ये मयूर ध्वज एक ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं करेगा, जो ब्राह्मण हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान के मुख हैं, उनकी सेवा में नहीं लग सकता। तो मयूर सरदे बोला मैं पढ़ लेता हूं दशरथ ऋषायण को साक्षी मान के, सारे देवताओं को साक्षी मान के, भगवान हरि को साक्षी मान के मैं पढ़ लेता हूं, जो भी आप मांगेंगे मैं वो दूंगा। तो वो ब्राह्मण जो भगवान थे बोलने लगे, असल में मैं जंगल से आ रहा था आपके शहर में, मेरे साथ में मेरा पुत्र भी आ रहा था, तो अभी उस पुत्र के ऊपर में एक शेर ने, एक सिंह ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उसको तुरंत मारने ही जा रहा था, तो तुरंत मैं उधर बोले मर गया क्या, बोले नहीं मरा नहीं, पर मैंने उससे पूछा कि जो ना इसको छोड़ दो छोड़ दो, बदले में तुम मुझे खा लो। बोले तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे में हड्डी हड्डी बचा है, मांस तो बचा नहीं, तो मैं क्यों खाऊं तुम्हें। तो बोले नहीं नहीं प्लीज छोड़ दो, प्लीज थोड़ी कृपा करके छोड़ दो। तो भाई शेर ने बोला मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं सिर्फ एक शर्त पे। राजा ने बोला जल्दी बताइए वो शर्त क्या है, हम सब उसे पूरा करेंगे, हम उस शेर को मारेंगे, वो जो भी करना है करेंगे। बोले वो शर्त तो बहुत कठिन है। तो वो बोले ब्राह्मण देवता बोलिए, मैंने पढ़ लिया है, आप बोलते क्यों नहीं, आप बोलिए। तो बोले वो शर्त ये है, उस सिंह ने बोला है कि मुझे यहां के राजा मयूर ध्वज का आधा शरीर चाहिए, ऊपर मस्तक से लेके आधा, एक हाथ एक पैर पूरा, आधा धड़ पूरा जिसे उसको चाहिए। ये सारे जितने ये सुनते ही राजा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, पर वहां पे जितने भी लोग थे सभी खड़े हो गए, ये नहीं हो सकता है, तो धूर्त है, तो ब्राह्मण नहीं है, ये नहीं है। राजा ने तुरंत सबको शांत किया, बोले नहीं नहीं ब्राह्मण ने बोला है और मैंने प्रण किया है तो ये होगा, मेरे शरीर के आधा टुकड़ा किया जाए। और जैसे तुरंत जो ना राजा ने घुटने टेके, ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ा, बोले मेरे शरीर के टुकड़े किया जाए। अर्जुन जो कि एक दूसरे वशिष्ठ के रूप में खड़े होते थे, बोले बहुत हो गया बहुत हो गया, वो बोले ही जा रहे थे, भगवान ने बोले पर एक और शब्द उसने सिंह ने बोली। तो हम बोले अब क्या बोले जा रहे, भगवान और क्या परीक्षा लेंगे। तो बोले सिंह ने शर्त लगाई कि ये मयूर ध्वज को काटा काटेगा कोई और नहीं काटेगा, इसको काटेगा इसका पुत्र ताम्रध्वज, उसको आके इस मयूर ध्वज का आधा हिस्सा करना है और आधा हिस्सा मुझे चैरिटी में देना है। अब तो बहुत हो गया, अभी सब सोचने लगे, ये तो सोचने के भूलने भी लगे, ब्राह्मण को हटाओ यहां से। पर मयूर ध्वज इतनी आसानी से हिलने वाले हुए थे, बोले बोले नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय सा, श्री भगवान हरि कृष्ण इन ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए हैं, तो मुझे तो अपने से इनकी सेवा करनी ही करनी है, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े। ताम्रध्वज उठाओ बलवान और काटो मेरे शरीर को। और ताम्रध्वज ने काटना शुरू किया, पिता कोई और काट रहा था तो फिर भी एक झटके में काटता, पर ये अपने पिता का शरीर कैसे झटके में काट सकता, ऊपर से काट रहा है, सर लहू लहू हो रहा है, पूरे शरीर में वो लहू आ रहा है, और स्वाभाविक है इतनी ऐसी दशा में उस मयूर ध्वज की आंखों से आंसू तो बहेंगे। तो तुरंत ये ब्राह्मण जो कि कृष्ण थे स्वयं बोलते नहीं 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 नहीं, ये जो ना ये दान मैं स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता, जो रुतों में दान दे रहा शास्त्र में बताया गया तमो बलिदान, मैं नहीं दे सकता ऐसा दान, छोड़िए छोड़िए। तो अभी तो बोलने लगे अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे, और मयूर बोलते नहीं नहीं ब्राह्मण देवता आप रुकिए रुकिए, एक्चुअली ये जो अश्रु इस वजह से नहीं निकल रहा कि मैं दान नहीं देना चाहता हूं, अश्रु इस वजह से निकल रहे हैं कि मेरा सिर्फ आधा शरीर आपकी सेवा में यूज हो रहा है, मेरा बाकी शरीर बेकार जा रहा आधा शरीर, क्या मैं दूसरा हिस्सा भी आपकी सेवा में यूज कर सकता। आप अर्जुन बोल सके बस कृष्ण बहुत हो गया बहुत कर रहे हैं, यहीं पर रुकिए यहीं पर रुकिए। तो कृष्ण ने तुरंत जो है अपना रूप दिखाया और वापस उनको स्वस्थ अवस्था में दिया, और मयूर ध्वज तुरंत समझ बोले कि मुझे पहले से पता था आप ही हो, तो वैसे भी मैं दही रहा था पर मुझे पूरा विश्वास था आप ही हो गए, इस प्रकार के लीला रच रहे आप मेरे साथ में। तो हम यहां पर देखते मयूर ध्वज एक ब्राह्मण की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन देने को समर्पित है। तो कोई बोलेगा हाँ बोली हमें भी मरने का अवसर मिले तो हम भी एक झटके में मर जाएंगे। बहुत पहले मैंने एक बच्चों की मैगजीन आती है उसमें एक छोटा सा लाइन पढ़ा था बट इट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग, उसमें लिखा था धर्म के लिए मरना आसान है, धर्म के लिए मरना आसान है, पर धर्म के लिए जीना मुश्किल है। तो अगर किसी को जीवन देना है तो जीवन मर के ही नहीं दिया जा सकता है, जैसे कई सारे आतंकवादी हैं हम धर्म की स्थापना करेंगे गोला बारूद लगा के खुद भी मरते। धर्म की स्थापना धर्म स्थापना हेतु स्वाधुर व्यवहार, अपने व्यवहार अपने जीवन के द्वारा अगर हम ये चैरिटी दे सके भगवान की सेवा में बहुत ही उत्तम चैरिटी होगी। किसी प्रकार से हमारा हर आचरण हर वाक्य वाचा मनुष्य इंद्रिय पर बुद्धियात्मना व अनुसृत स्वभाव
करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयेत। हर प्रकार से अपनी बाड़ी मन और एक्शन को इस प्रकार से हम डॉक्टर कर सके कि सिर्फ भगवान और गुरु की सेवा में हो। श्रील प्रभुपाद जब भारतवर्ष में प्रचार कर रहे थे पूर्व अमेरिका जाने के, तो उन्होंने बहुत से लोगों के पास में गए, बोले आप जीवन समर्पित कीजिए, अच्छा आपके चार पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, तीन पुत्र, एक दे दीजिए भगवान की सेवा के लिए। पर बोले लोग रेडी नहीं थे, जीवन देने बहुत मुश्किल कार्य है। पर जस्ट ही स्वामी जी जब विदेश में गए और वहां के लोगों से अपील किया, तो क्या प्रभु थे, क्या स्त्रियां थी, क्या पुरुष थे, सभी रेडी हो गए। यंग एंड ओल्ड एवरीबॉडी, गुड नंबर ऑफ पीपल बिकेम रेडी अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाने के लिए। कैसे सेवा में लगाया? प्रचार करके, अपने शब्दों से नहीं, अपने धन से ही नहीं, अपने एक्शंस के द्वारा। और इसी वजह से जब श्रील प्रभुपाद उनको भारत में लेके आए, उनको बोले नाचते सफेद हाथी, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, उनके कार्यकलाप को देख के भारतवासी भी अचरज में रह गए, आंखें खुली की खुली रह गए। इस प्रकार विदेश में रहने वाले लोग भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये दान देने का व्यक्ति के अंदर में शक्ति हो सके, हर प्रकार से दान दे, बुद्धि दान में दे, सेवा में धन दान में दे, पर अपने जीवन, अपने समय, अपने एक्शंस को भी भगवान की सेवा में लगाए, ये बहुत ही उच्च कोटि का दान होगा। उसके अलावा भागवतम के 11वें, अगर दान की ही बात की जा रही है, तो 11वें अध्याय में उद्धव को कृष्ण बहुत सारी चीजें बताते, असली तपस्या कौन सी है और असली तपस्या कौन सी है, असली रण त्याग कौन सा है, रियल टॉलरेंस क्या है, रियल ह्यूमिलिटी क्या है, स्वभाव विजयते शौर्य, इस प्रकार से अलग अलग श्लोक बोलते हैं। पर दान के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? दान के बारे में वो 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में बोलते हैं, दंड न्यास परम दानम, द ग्रेटेस्ट चैरिटी इज टू गिव अप ऑल अग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स, दूसरे के प्रति जो अग्रेशन, अग्रेशन को हिंदी में क्या शब्द बोलेंगे, मुकाबला नहीं, मतलब एक आक्रमण करने की भावना, एक प्रकार से द्वेष की भावना, हार रोष की भावना, कन्हैया चंद्र को बहुत धन्यवाद। तो कहना कि एक रोष की भावना किसी व्यक्ति के ऊपर हम अगर देश गिवअप कर सके, तो ये परम दान होगा। ये एक्चुअली साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साधकों के लिए, पर साधारण व्यक्ति भी लग सकता है, पर जो ऑलरेडी भक्ति में कर रहे हैं उनके लिए ये जो वर्सेस है 11.19 में लगातार आते हैं, बहुत ही विशेष श्लोक है, वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके तो बहुत कुछ गेन करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर एक कथा सुनी थी, एक स्टोरी मैंने पढ़ी, एक छोटी सी बुक में पढ़ी थी पहले, पता नहीं ये सत्य है कि नहीं, पर बहुत ही प्रेरणादायक है। तो एक बहुत ही एक पायस, एक बहुत ही धार्मिक बिजनेसमैन था, युवा था और व्यापारी था और काफी सफल था अपने व्यापार में, बहुत धनी था, पर साथ ही साथ में वो धर्म में, आध्यात्मिक चर्चा में भी उसका मन रुकता था, तो भगवान की सेवा भी करता रहता था, अपना बिजनेस भी अच्छे से कर रहा था। एक दिन वो जा रहा था पालकी में बैठे हुए, और पालकी में जाते हुए उसने कहीं बाहर से एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनी, अरे अपने जीवन ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए बस, क्योंकि उसके उसके हृदय में ये इच्छा पहले से इतनी प्रज्वलित थी कि उसने सोचा कि बस अभी तो बहुत हो गया, अभी बस तुरंत मुझे अपना जीवन सेवा में लगा देना। और पहले ही वो एक शुद्ध वैष्णव से काफी प्रेरणा प्राप्त करता था, तुरंत उसने अपना जितना भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी संपत्ति थी, उसने दान में दिया और जपमाला उठाई, भगवान का नाम लेना शुरू किया, तिलक इत्यादि लगा के उनकी सेवा में पहुंच गया। और एक रिनन्सिएंट, एक त्यागी, एक की भावना से उसने जीवन जीना शुरू किया, भिक्षा मांग के खाता था और जो भी मिल जाए, और तो पहले इतना धनी था, पर अभी जो भी मिल जाए उसी से सेटिस्फैक्शन करता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था और इस प्रकार से सेवा में लगता, पूरा दिन प्रयास करता था ज्यादा ज्यादा नाम भजन किया जा सके, भगवान का स्मरण किया जा सके, गुरु की सेवा किया जा सके। इस प्रकार से करते करते उसको कई महीने निकल गए और फिर वो अपने दिन
अपने गुरु के पास में गए, तो गुरु आगे कुछ बोल नहीं रहे थे, तो उसने सोचा खुद ही गुरु के पास जाता हूँ और बोला कि हे गुरु महाराज, मुझे क्या आप दीक्षा दे सकते हैं? अभी तक मैंने दीक्षा नहीं दी, अपने मन में गुरु माना था उनको, शिक्षा ले रहा था उनको, तो क्या मुझे दीक्षा दे सकते हैं? बोला हाँ क्यों नहीं, पर थोड़ा समय रुको। फिर कुछ समय गुजरता गया, इसी प्रकार से अपनी भजन करता रहा और उसने अपने स्ट्रिक्टनेस कर दी, बोला शायद गुरु महाराज मेरे को कोई और टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसने तपस्या और कठोर कर दी और ठंडे पानी से बिल्कुल नहाता था और कम से कम खाता था और भिक्षा मांगता था, कुछ और नहीं करता था सिर्फ भजन के अलावा। फिर उसके बाद बोला कुछ समय और हो गया, बोला जाकर गुरु के पास, फिर बोला गुरु महाराज क्या अभी मुझे आप दीक्षा दे सकते हैं? बोला हाँ हाँ दूंगा, पर थोड़ा समय और रुको। फिर उसने फिर इसी प्रकार से अपने उसने अपने दिनचर्या शुरू की, नियमित रूप से जाता था, हर एक घर में मांगता था। फिर समय गुजरा, फिर गए गुरु के पास, बोले गुरु महाराज क्या अभी आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? जियोगे समझते हैं, बोले दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, पर थोड़ा और रुको। अभी वापस आया, अब इसने बहुत गहराई में सोचना शुरू किया, क्या चीज है जो गुरु महाराज मेरे में टेस्ट ले रहे हैं? उसको समझ में आ गया, ये निश्चित रूप से कुछ चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो चाह रहे हैं कि मैं त्यागूं, कुछ करूं जिससे मैं उनका कृपा प्राप्त कर सकता हूं, भगवान भक्तों की कृपा प्राप्त कर सकता। अब उसने सोचना शुरू किया क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। उसने अपनी पूरी दिनचर्या पे महीनों महीनों से जो कर रहा था उस पर ध्यान देना शुरू किया, भजन ध्यान से कर, प्रयास कर रहा हो, चैरिटी के अलावा कुछ और चीज नहीं करो, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता उतना ही मांगता हूं। फिर उसके माइंड में उसके मन में एक चीज आई, वो नियमित रूप से भिक्षा मांगने तो जाता था, हर घर में भिक्षा मांगता था, एक घर छोड़ के। पहले ये व्यापारी था, व्यापार में होता है, ये जमींदार था, लैंड भी था, और जमीन के सिलसिले में आप जानते हैं कभी कोई कब्जा करने का प्रयास करता, कभी कुछ, कभी ये, कभी लेन देन में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, कभी उसको किसी ने बेची थी, उसको किसी और व्यक्ति ने भी किसी और को जमीन दे दी थी, तो एक और सेठ के साथ में उसकी लड़ाई किसी जमीन को लेकर हुई थी, और वो सेठ भी उसी गांव में रहता था, और दोनों के बीच में इतना भयंकर रोष, इतना भयंकर लड़ाई हो गई थी कि दोनों एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक प्रकार से जानलेवा शत्रु बन गए। तो जब से ये इसने एक मंडीकेंट एक त्यागी जीवन जीना शुरू किया था, तो हालांकि जान को कोई खतरा नहीं था उसे, पर ये व्यक्ति भी पूरे गांव में भिक्षा मांग लेता था, हर घर में भिक्षा मांग लेता था, पर उस सेठ के घर में जाके कभी दरवाजा उसने खटखटाया नहीं, कभी मौत नहीं किया। उसको समझ में हो ना हो मेरे गुरु इसी का इंतजार कर रहे हैं। तुरंत सारा जितना भी हेजिटेशन था तुरंत सब कुछ त्याग किया, तुरंत गया उस व्यक्ति के घर में और दरवाजा लगना किया, नॉक किया, और नॉक करते ही अंदर से क्या हुआ, वहां का जो नौकर था उसने झांका, देखा कौन है, ध्यान से देखा देखिए वही से, उसने सपने भी नहीं सोचा यहां गया, वो भाग वो नीचे उतरने की बजाय ऊपर भागा, ऊपर भागा, बुला रहे सुनो सुनो कौन है, वो सेठ आया, बुला रहे सेठ जो हमारे शत्रु थे, जो यहां जो जो सेठ था वो बोला कि अच्छा वो है, उसके परिवार जन वो सब आगे बेटे बेटे सब जो थे वो सब भागते हुए बोले क्या है, और सेठ ने देखा ऊपर अपना बालकनी से, अरे अच्छा ये तो क्या ये भिक्षुक तो बन ही चुका था, पर अभी मेरे दरवाजे में भी किस लिए है, और उसने बोला क्या है, बोले भिक्षा दे ही, अब तो उसके आंखों में आंसू आ गए, ऊपर से भागते हुए आया नीचे, दरवाजा खोला, उसके चरणों में गिर गया, और उसने जो भिक्षुक था इसने उठाया, बोला आज मेरे चरणों में नहीं गिर, मुझे भिक्षा दीजिए, और दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, दोनों के आंखों सिर्फ आंसू बह रहे थे, और रोष कहीं पर नाम निशान भी नहीं था। तो बोले भिक्षा क्या, आइए हो मेरे घर, उन्होंने खूब अच्छे से खान पीन का व्यवस्था किया, बोले नहीं मैं तो सिर्फ भिक्षा ही लूंगा, बहुत कुछ भिक्षा देने का प्रयास किया, पर थोड़ा सा एक्सेप्ट किया जो एक भिक्षु के धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और वो भिक्षा लेके आया, वो भिक्षा ग्रहण भी दिखी, उसके बाद गुरु के पास में गया, बोले गुरु महाराज क्या आप भिक्षा दे सकते, बोले हाथ पर बैठो, और उसके कान में मंत्रावान किया। तो ये एक भक्त के लिए बहुत बढ़िया दान हो सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण धर्म को बता रहे हैं। अपने हृदय में किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स जो भक्ति में आने के बाद या स्पेशली उसके आने के पहले भी रही हो, जस्ट गिव इट अप, इसको दृष्टि हम मुक्त हो सके। हमारे लिए इस्कॉन जीबीसी के प्रयास से कई अलग प्रकार के कोर्सेज, गुरु वैष्णव सदाचार, और अभी कुछ समय पहले हिस्सोलेनेस भक्ति भागवत महाराज ने नामामृत प्रोग्राम भी लिया, तो नाम भजन का पूरा क्रोस करवाया। तो नाम भजन के अंतिम जो जो लास्ट सेक्शन था वो हरिनाम जप में, उन्होंने नहीं बताया फॉरगिवनेस वर्कशॉप, कैसे व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता, कैसे हम क्षमा मांग सकते हैं। तो जस्ट गो लेट गो ऑफ दोस इल फीलिंग्स, वो जो गलत विचार किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसको हम छोड़ सकते, गिव अप कर सकते। जिस दिन हम उससे मुक्त हो सकते हैं हम सही रूप से भजन करने के पात्र बन पाएंगे। त्रिनादति सुनी चेना तरोरति सही सुना अमानी नमान देना कीर्तनिया सदा हरे, तब हम कीर्तनिया सदा होने के खरीद के पात्र बन सकते हैं। और ये एक भक्त के लिए तो स्पेशली विशेष दान हो सकता है। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है उत्तर हो, प्रश्न कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रश्न पूछे आपको तो उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े अच्छे से बताया। मैं तो बताया कि लेट गो ऑफ ऑल इल फीलिंग, हमें कोई भी किसी बारे में कोई रोष नहीं रखना चाहिए। कई बार होता है कि हमारी कोई पुरानी बातें होती हैं या कुछ ऐसा हो गया और वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते उन बात, वो बार बार कहीं ना कहीं मन में आ ही जाते हैं, उसको क्या करना चाहिए। ये हम सभी जो लोग प्रयास करें उन सभी के लिए चैलेंज है। इसी के लिए महाराज ने आपने शायद कोर्स अटेंड भी किया था नामामृत प्रोग्राम, महाराज ने पूरा प्रोग्राम कराया है, उस पर लिखा है। वो सारा प्रति एक नहीं तो दूसरा नहीं तो इनफैक्ट सारे के सारे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। उस व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं, उस व्यक्ति से कि हम डायरेक्टली एक से कन्फेस कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया तो महाराज ने ये केस भी बताया था, तो हम उस व्यक्ति के जो प्रिय लोग थे उनको जाके उनकी सेवा कर सकते, वो पूछे कि आप क्यों सेवा कर रहे हैं इतनी, तो हम बोल सकते कि ना क्योंकि मैंने उनके प्रति अपराध किया था, उसकी प्रायश्चित हेतु मैं आज कर रहा हूँ, फिर बाद में भोज रख सकते हैं बच्चों की व्यवस्था आपके पब्लिकली बोले कि मैं इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताई थी। ये भी एक साधना है, करते करते निकल पाएगा। आप भी मुझे आशीर्वाद है कि मैं भी इससे मुक्त होता, कहना बहुत आसान है पर क्योंकि ये प्रिंसिपल था दान में आता है तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट को डिस्कस करना, क्योंकि हम सब साधक वक्त समूह में बैठे हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर कहीं होते तो हम दूसरे प्रकार के दान देने में महाराज ने क्यों कथाएं भी मैंने लिख रखी थी वो सारी चीजें भी ध्यान देते, पर भक्त समूह में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक चीज हम और जरूर कर सकते हैं जो ऑन गोइंग लेवल में हो सकता है किसी भी भक्त के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके प्रति में मेरे नेगेटिव फीलिंग है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। एटलीस्ट हम कई भक्तों से सुना जो ये अपने जीवन अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति से इन्हें हमें हर्ट किया है, अगर उस व्यक्ति के लिए हम सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज किसी के लिए हम प्रार्थना ही कर पाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज अगर हम उसको दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ा रिलीफ। एक व्यक्ति भक्त हमें बता रहे थे कार्तिक में उन्होंने भीष्म पंचक में यही गौर लिया, पांचों दिन वो सोचते थे या फिर पूरे जीवन में सोचते किस व्यक्ति से मुझे हर्ट हुआ सबसे ज्यादा, और डेली उनमें से मतलब एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने पाने, वो बोले थे प्रभु जी मेरा पांच दिन में ऐसा चैंटिंग हुआ सब ये करने के मात्र से, बड़ा स्पेशल है। तो एक ही तरीका है और बाकी बहुत से तरीके हैं, आप बाकी कुछ वरिष्ठ वैष्णव भी शेयर कर सकते हैं। जी प्रभु दर्पण को आप ऐसे भी बोल सकते लोग
हरे कृष्ण, क्योंकि एग्रेशन जो है छोड़ना जरूरी क्यों है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि जैसे देखते हैं करके जैसे महाभारत में भी अलग अलग युद्ध में देखते हैं, इवन जैसे कि देखना देखा था कि युद्ध में भी जो है एग्रेशन निकल रहा था युधिष्ठिर और जैसे अर्जुन वाले पास से हम देखते हैं कि एक बार जैसे अर्जुन भी युधिष्ठिर के जैसे एग्रेशन निकला होता, तो इस अप्रेशन जैसे कि या फिर तदस्थी करने का ट्राई करें। पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये कि करना जरूरी क्यों है, दूसरा कि क्या इसमें जो है कि समय ही समय से जैसे कृष्णा मुझे प्रैक्टिस करेंगे जैसे रजस तमस जैसे कम होगा, रजोगुण तमोगुण कम होगा तो अपने आप ये चीज आती है की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और क्या सप्रेशन नहीं है, मतलब कि जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में बच के सप्रेशन है कम्प्लीट, अपने इस नेचर को भी दबा दो तो वो फिर किसी और तरीके से निकलता है। ये दो प्रश्न है मेरे कि जरूरी क्यों है और फिर कहीं सप्रेशन नहीं है।
धन्यवाद। तो मैं भी इस समय जैसे एक बिगनर हूँ, अभी पहला स्टेप जाना शुरू करो, इससे मुक्त हुआ जाए ये सोच रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एनी अभी देखिए एक अग्रेशन हो गया बाहरी एक्शन के रूप में, और एक अग्रेशन हो गया एक रोष की भावना मेंटेन करके रखना, दोनों में डिफरेंस है। कुछ दिन पहले हमने गुंडीचा मंदिर माध्यम बनाया, तो उसकी कथा अगर हम पढ़ेंगे चैतन्य चेतन में, तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो व्यक्ति अच्छे से सेवा नहीं करता था उसको आके करेक्ट करते थे, उसको उसमें क्रिटिसाइज, उसको जो है एक प्रकार से डांट लगाते थे, पर वहां पे लिखा हुआ है तो डांट लगाते जिसको करेक्ट देन उसको चेस्टाइज देन विदाउट ग्रज, इस वजह से एक्सेप्ट कर पाते थे। तो हो सकता है सॉरी इसी वजह से, तो मतलब दैट एग्रेशन वॉज देयर एक्सटर्नली स्पीकिंग, बट अंदर से वो एग्रेशन नहीं था, उस व्यक्ति के भले के लिए। इसी प्रकार से जब हम में से कई लोग इस प्रकार से पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे या कोई गुरु या गुरु की प्रतिनिधित्व पोजीशन पे हो सकते हैं, तो उनको ये करना ही पड़ेगा। जैसे जो पांडव का आपने एग्जांपल दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको धर्म की स्थापना के लिए एग्रेशन करना पड़ेगा, पर फिर भी अंदर से उस व्यक्ति के बारे में भला ही चाहे। जब उन्होंने जब सबको मार दिया तो हम देखते युधिष्ठिर महाराज का हृदय देखते, वो कह रहे कितना मैंने मेरी लालच की वजह से ऐसा हुआ। तो इंटरनली ही वॉज नॉट होल्डिंग एनी अग्रेशन, एक्सटर्नली वॉट वॉज देयर एट द मैटर ऑफ ड्यूटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इन दोनों के बीच में भेद समझ के जो यहां पे बात किया जाए, इंटरनल अग्रेशन की बात किया जाए एज फार एज आई अंडरस्टैंड, और उससे मुक्त होंगे तभी हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिसी को एक भजन में हमारा बहुत बड़ी बाधा है। जो आपने पूछा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको किए बिना हमारा अच्छे से हम चैंटिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सो मेरे ख्याल से 9:05 हो चुका है, सभी को क्षमा चाहूंगा जिन्होंने प्रश्न रह रहा है, मेरे से कोई त्रुटि हुई है जो कि निश्चित रूप से हुई है, उसके लिए आप क्षमा कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतनी देर टॉलरेट किया लगभग एक घंटा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राशि में भागवतम की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।